15 नवंबर 2003 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज का अंत। इसमें बात चल रही थी, जब अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं तो कभी अपसेट नहीं होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अपसेट होते हैं तो अपने से भी असंतुष्ट होते हैं और दूसरों से भी असंतुष्ट होते हैं। इस सीजन की पहली अव्यक्तवाणी में इस वर्ष का विशेष पुरुषार्थ बताया है, ना अपसेट होना है ना अपसेट करना है, संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। अगली बात बोली है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, कितना प्यार है, बहुत है, बहुत प्यार है, तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को दिया है, क्या रिस्पॉन्ड दिया है। 15 नवंबर 2003 की वाणी का तीसरा पेज। बाप का भी प्यार है तब तो आपका प्यार है ना, बाप का प्यार न होता तो आपका प्यार कहां से आता, तो रिटर्न क्या दिया काहे का, बाप के प्यार का रिटर्न क्या दिया। प्यार का रिटर्न है, प्यार का रिटर्न है समान बनना, यही रिटर्न है। किसके समान बनना, ब्रह्मा बाप के समान बनना। तो ब्रह्मा बाप ने तो 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म वतनवासी हो गए, तो कैसे समान बनेंगे हैं? है? समान कैसे बनेंगे है? नहीं, समान कैसे बनेंगे, वो तो इस स्थूल शरीर के बंधनों से परे हो गए, सिर्फ सूक्ष्म शरीर का बंधन रह गया, वो भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। बीच रूप स्टेज में आकर के दूसरा पार्ट पकड़ लिया ऊंची स्टेज का, क्योंकि सूक्ष्म वतन से भी ऊंची स्टेज कौन सी होती है, हैं? निराकार बीज रूप स्टेज है, निसंकल्पी स्टेज है, परमधामी स्टेज है, ब्रह्मलोक की निराकारी स्टेज जो शिव की है, हैं? शिव निराकारी है, निर्विकारी है और निरहंकारी है। तो ये समान बनने की रिटर्न देना है। अभ्यास कौन सा बताया था इसके लिए, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्टेज में टिकने का अभ्यास करना है, तो यही रिटर्न है। ये सीजन का फर्स्ट टर्न है, तो फर्स्ट में फर्स्ट नंबर आ गए हैं। बाप दादा को भी जितने ज्यादा बच्चे दिखाई देते हैं तो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, जितना हाल बनाया है उतने ही आते हैं। माना जितने जितने हाल बनाते जाते हैं उतने उतने आते जाते हैं। अभी बड़ा हाल बनाओ तो बहुत आवे, इससे भी बड़ा हाल बनाए। अभी देखो, अभी भी जितना बड़ा हाल बनाया है तो फुल हो गया है ना। ये फुल होना इशारा करता है कि और बड़ा बनाओ। हाल सज जाता है ना, और ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से हाल सजा हुआ है तो कितना अच्छा लगता है। मधुबन वाले भी, चाहे शांतिवन हो चाहे पांडव भवन हो, अगर खाली खाली होता है तो अच्छा नहीं लगता है। भरा हुआ होता है तो अच्छा लगता है कि मधुबन वालों को एकांत चाहिए है। ज्यादा भर जाते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो अच्छा लगता है, या मधुबन वालों को अशांति होती है ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने से है। मधुबन वालों को ज्यादा लोग आ जाते हैं तो अशांति महसूस होती है, अच्छा लगता है या अशांति महसूस होती है? अच्छा नहीं लगता है ना। एकांत चाहिए बना, अंदर से कोई डिस्टर्ब होता है और उसके आसपास चारों तरफ कोई भीड़ लगा के इकट्ठी कर दे तो उसे अच्छा लगेगा है? अच्छा नहीं लगेगा। अब अव्यक्त बाप दादा तो जानते हैं, तो पूछा एकांत चाहिए? एकांत हद का या बेहद का चाहिए? बेहद का एकांत क्या होता है? है एक के अंत में रहना है, एक का अंत जानना अर्थात तंत जानना। रहस्य क्या है, उस रहस्य को पहचान लेना। तो एक के अंत में रहना यह है बेहद का एकांत, और जो इसे एकांत में नहीं टिक पाते हैं उनको फिर स्थूल एकांत चाहिए। ज्यादा भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। तो पूछा एकांत चाहिए कि संगठन रिमझिम अच्छी लगती है, फिर भी बीच बीच में एकांत मिल ही जाता है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है, डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, क्योंकि मधुबन इंटरनेशनल हो जाता है ना, देश और विदेश के सब इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा है, बाप दादा ने दादी का संकल्प सुना। संकल्प है, आज सवेरे क्लास में दादी जी ने सभी को देश विदेश में सेवा की धूम मचाने का संकल्प दिया था। भारत का कोई भी गांव, कोई भी देश इस वर्ष संदेश से वंचित न रहे, ऐसा प्लान बनाओ। ये दादी जी ने संदेश दिया। तो बाप दादा ने दादी का संकल्प सुना, संदेश सुना, संकल्प दिया है ना, अच्छा है, देखेंगे इस संकल्प को विदेश पूरा करता है या भारत पूरा करता है। संदेश तो मिलना चाहिए, इतनी आपको प्राप्ति हुई, बाप मिला, खजाना मिला, पालना मिली, कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश तो पहुंचना चाहिए, उलहना तो नहीं देंगे ना। किनको संदेश पहुंचना चाहिए हैं? अपने भाई बहनों को। अपने भाई बहन कौन है? बस जो ब्रह्मा की संतान बने हैं वही अपने भाई बहन हैं, उन्हीं को संदेश देना है, हैं?
औरों को देना, लेकिन
दादी का संकल्प क्या है और बाप दादा क्या पूछते हैं, हैं? दादी ने क्या संकल्प दिया? देश विदेश में धूम मचनी चाहिए, भारत का कोई भी गांव न रह जाए, हैं? उस हिसाब से तो गांव में तो बहुत सेवा कम हुई है, बड़े बड़े शहरों में तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम जानते हैं, लेकिन गांवों में तो आवाज भी नहीं है। और फिर सभी देशों में धूम मच जाए, दुनिया में देश तो बहुत है। तो दादी ने स्थूल रूप से कहा या कोई गुह्य बात बोली? और बाप दादा किस तरह बोल रहे हैं? कम से कम बाप दादा ने शब्द क्या लगा दिया हैं? कम से कम अपने भाई बहनों को तो संदेश पहुंचना चाहिए हैं? कौन सी दुनिया में संदेश पहुंचना चाहिए हैं? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में तो संदेश पहुंचना चाहिए, इतनी आवाज तो फैले, इतनी धूम तो मचे। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में चारों ओर संदेश फैलेगा कि बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है, उस आए हुए बाप के एकांत में जाना है, उस एक का अंत पहचानना है, तो ये संदेश तो पहुंचना चाहिए। इस संदेश की शुरुआत कब से हुई हैं? 76 से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाना शुरू हुआ, और 76 के लिए ही घोषणा की गई थी 66 में कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। तो पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना क्या चुटकी में हो जाएगी? इतना बड़ा विश्व है, इतने बड़े विश्व में एक ईश्वरीय संगठन का पहले सैंपल बनना चाहिए। तो 76 से शुरुआत हुई ब्राह्मणों की, जो आधारमूर्त दुनिया है अथवा जो ब्राह्मणों की बीज रूप दुनिया है उसमें संदेश देने की 76 से शुरुआत हुई थी। क्या क्यों नहीं उससे पहले शुरुआत हुई? 76 को ही बाप का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों मनाया गया? इसलिए मनाया गया कि 76 तक, 47 से लेकर 30 वर्ष ब्रह्मा के पूरे होते हैं। कितने? 30 वर्ष ब्रह्मा के पूरे होते हैं, ये पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। सैतालीस से पहले के जो 10 वर्ष हैं वो है भक्ति मार्ग की फाउंडेशन के, वहां ओम की ध्वनि लगाई जाती थी भक्ति भक्त लोगों की तरह। पुरानी संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ सुनाए जाते थे जैसे दुनियावी भक्त लोग सुनाते हैं। उस समय ज्ञान की शुरुआत नहीं हुई थी। तो ज्ञान का आरंभ करने के लिए ब्रह्मा के मुख से शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है कि पहले पहले वेद वाणी निकली, ब्रह्मा के मुख से उच्छ्वास निकला और वेद निकले। वेद माना जानना, जानकारी, वेद माना जानकारी। तो बेसिक नॉलेज के बतौर आत्मा परमात्मा और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी ब्रह्मा की पहली मूर्ति के द्वारा मिली और उसके लिए टाइम निर्धारित हुआ 30 साल। अगर 100 साल के संगम में से ब्रह्मा के 30 साल निकाल दे तो कितने वर्ष बचते हैं? सन 76 से लेकर के 2036 तक कितने साल बचते हैं? है 60 साल बचे ना। तो 3 मूर्तियां हैं। शिव जयंती गाई जाती है या गाई जाएगी या प्रत्यक्षता होगी, शिव के जन्म की प्रत्यक्षता होगी, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, तो 3 मूर्तियों के द्वारा शिव प्रत्यक्ष होगा या सिर्फ एक ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होगा? मुरली में क्या बोला है? मुरली में तो बोला है कि सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो एक मूर्ति की प्रत्यक्षता तो 1947 से लेकर 1976 तक 30 साल में हुई, लेकिन दूसरी 2 मूर्तियां कौन सी हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं था। तो सन 76 को बाप दादा ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया, क्योंकि ब्रह्मा का तो अर्थ ही होता है बड़ी माँ। माने सन 76 तक कौन प्रत्यक्ष हुआ? जो सृष्टि की बड़ी माँ है वो छोटे छोटे बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुई, दुनियावी रीति से भी बच्चों के सामने पहले बाप प्रत्यक्ष होता है या माँ प्रत्यक्ष होती है? माँ प्रत्यक्ष होती है। छोटे छोटे बच्चे वो माँ को पहले पहचान लेते हैं, क्योंकि माँ से प्यार मिलता है, तो वो माँ के प्यार की भावना उनके दिल में बैठ जाती है, फिर माँ के द्वारा बच्चों को किसका परिचय मिलता है? बाप का परिचय मिलता है। तो बेसिक नॉलेज की जो परिपक्वता ब्रह्मा के द्वारा हुई, उस परिपक्वता ने, ब्रह्मा की सोल ने सूक्ष्म शरीर को परिवर्तन करके बीज रूप स्टेज धारण करना शुरू कर दिया। क्या शरीर भी कितने हैं? भक्ति मार्ग में भी 3 प्रकार के आत्मा के शरीर माने जाते हैं। एक ये स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर, बीज रूप। तो 69 से दादा लेखराज ब्रह्मा ने सूक्ष्म शरीर धारण किया। वो सूक्ष्म शरीर धारण करने का, समान बनने का लक्ष्य बाबा ने नहीं दिया है। वास्तव में बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वो ब्रह्मा की सोल जो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली थी सन 76 से पहले, वो ब्रह्मा की सोल बीज रूप स्टेज धारण करके कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश कर जाती है। कौन से ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है? जो ब्रह्मा के बड़े 4 पुत्र माने जाते हैं, मानसी पुत्र, सनत सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनमें सनत कुमार को ज्ञान के आधार पर सबसे बड़ा माना जाता है, जिनके नाम के आधार पर देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन पड़ता है। वो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र जो सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, उनमें जो आखिरी पुत्र है तो छोटा लेकिन ज्ञान में बड़ा होता है। तो मुरली में क्या बोला, जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा ठहरा। तो बाप ने जो नॉलेज दी ब्रह्मा के द्वारा, उस नॉलेज को धारण करने में जो तीखा बच्चा ब्राह्मण बच्चा गया, उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर जाती है। वो बच्चा ब्रह्मा की सोल को, माता को अपने मस्तक पर धारण करता है। क्या कहते हैं, माँ की आज्ञा बाप की आज्ञा सर माथे पर। तो बाप तो ज्योति बिंदु है ही तीसरे नेत्र के रूप में, वो तो दूसरी मूर्ति में शंकर का तीसरा नेत्र दिखाया ही जाता है। लेकिन चंद्रमा के रूप में जिसने शीतल पार्ट बजाया, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिसकी रहबरी में रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसे बिच्छू टिंडन जैसे दुख देने वाले बच्चे भी पलते रहे, ऐसे ज्ञान चंद्रमा को, शीतलता धारण करने वाली सोल को शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। वो चंद्रमा संपूर्ण होता है या अपूर्ण होता है? अपूर्ण होता है, माने कृष्ण की सोल सन 76 में संपूर्ण नहीं बन जाती है, सिर्फ बीज रूप धारण, बीज रूप स्टेज धारण करने में परिपक्व होना शुरू होती है। तो वो बीज रूप स्टेज जो है दो आत्माओं की परिपक्व स्टेज में होती है सन 76 में, वहां से बाप की प्रत्यक्षता होती है, क्योंकि माँ के बगैर बाप नहीं है और बाप माँ के बगैर नहीं शोभता। तो भारतीय परंपरा में अर्धनारीश्वर का रूप पूजा जाता है, आधा अंग नारी का स्त्री का और आधा अंग पुरुष का। तो ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप ब्रह्मा की सोल और शंकर की सोल दोनों कंबाइंड रूप में पार्ट बजाते हैं, और उनमें शिव सुप्रीम सोल तो प्रवेश होकर रहता ही है। ये परमात्मा बाप का मुकर्रर रथ गाया हुआ है। इससे पहले दो रथ का वर्णन मुरली में आया है, कौन कौन से रथ, एक टेम्परेरी रथ और दूसरा मुकर्रर रथ। टेम्परेरी रथ सन 47 से शुरू हुआ और 69 में गायब हो गया, और जो मुकर्रर रथ है वो यज्ञ के आदि में भी था, जिसके द्वारा ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का रहस्य पता चला था, ज्ञान का, जिसके द्वारा बीजारोपण किया गया था। बीजारोपण करने के बाद जो आदि का कार्य है बाप का, वो समाप्त हुआ। बीच में बच्चे की पालना माँ के द्वारा होती है, तो ब्रह्मा माँ के द्वारा 69 तक साकार में पालना हुई, और 69 से लेकर के 76 तक अव्यक्त पालना हुई भरपूर। ये माँ की पालना का कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद अव्यक्त वाणी में बोल दिया कि जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, कोई नौकरी करता है ना तो ट्रांसफर हो जाता है, तो क्या करते हैं, सेवा स्थान चेंज करते हो, वैसे ही बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही है, सेवा वही है, लेकिन स्थान चेंज हो चुका। तो भारत में भगवान का जन्म कहां माना जाता है, कौन सा स्थान है जहां भगवान का जन्म भूमि बहुत प्रसिद्ध है, है? भगवान का जो स्थान है वो विशेष रूप में भारत के अंदर कौन सा माना जाता है, चाहे वो शिव शंकर भगवान हो, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, उनका स्थान विशेष कौन सा माना जाता है? यूपी। तो यूपी में स्थान परिवर्तन हुआ। वो स्थान परिवर्तन होने के बाद विश्व पिता 76 से ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होना चाहिए या बाहर की दुनिया में पहले प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए? तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों ने नंबर वार उस बाप को पहचानना शुरू कर दिया। तो बाप का जो संदेश है कि बाप प्रैक्टिकल में सृष्टि पर आया हुआ है, काहे के लिए आया हुआ है? जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, गा बजा के चले जाते हैं, दुनिया नीचे गिरती जाती है, ऐसा करने के लिए आया हुआ है? नहीं, वो सिर्फ धर्म स्थापन करने नहीं आता। धर्म स्थापन करने के साथ साथ राज्य और राजधानी स्थापन करके जाता है। क्या? राजधानी भी स्थापन करके जाता है। तो जो राजधानी स्थापन करके जाता है वो स्वरूप कौन सा है? राजधानी तो स्थापन करता है लेकिन माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलता है। क्या? स्वर्ग के गेट खुद नहीं खोलता, किसके द्वारा खोलता है? माताओं के द्वारा। तो माताओं में भी सबसे बड़ी माता होगी कोई? जगत पिता है तो जगदम्बा भी होगी। तो वो जगदम्बा जो है वो भी प्रत्यक्ष होती है। जगत पिता भी प्रत्यक्ष होना शुरू होता है ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में। बाहर की दुनिया की बात नहीं है। पहले घर का सुधार होगा या पर का सुधार और सारी दुनिया का सुधार हो जाएगा?
घर का सुधार।
पहले घर का सुधार, घर का परिवर्तन। और घर जो है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया, उसमें भी स्थान बता दिया। जो दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल प्लेस माना जाता है वो कौन सा शहर है? कौन से शहर की सेवा के ऊपर मुरली में और अव्यक्त बाप दादा ने सबसे ज्यादा जोर दिया है?
दिल्ली।
क्यों? दिल्ली है बाप का दिल। दिल्ली है स्वर्ग की दहलीज। दहलीज नाम भी तो है। दिल्ली स्वर्ग की दहलीज भी है, दिल्ली नरक की दहलीज भी है। क्या? दिल्ली पर सब धर्म वालों ने राज किया है। ऐसा दुनिया का एक भी शहर नहीं होगा जिस पर सब धर्म वालों ने राज किया हो। एक दिल्ली शहर ही ऐसा है जो सारी दुनिया का मात्र प्रधान शहर है। आज भी देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, ये चारों ही मुख्य धर्मों के लोग जितना यहां निवास करते हैं उतना और किसी दुनिया के शहर में निवास नहीं करते। तो भारत है मातृ प्रधान देश, और उस भारत माता मातृ प्रधान देश का सेंट्रल प्लेस है दिल्ली। क्या? वो दिल्ली में पहले आवाज निकलनी चाहिए। दिल्ली का आवाज सारे भारत में पहुंचेगा। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन हो जाता है। दिल्ली पर सबकी नजर है, माने सब धर्म वालों की, सब देशों की दिल्ली पर नजर है। तो बाप दादा की भी नजर दिल्ली पर है। तो दिल्ली कोई चैतन्य के ऊपर नजर है या जड़ के ऊपर नजर है?
चैतन्य
दिल्ली है? कोई चैतन्य दिल्ली है ना, जगत की माता के रूप में पार्ट बजाने वाली? पहले चैतन्य का सुधार होगा या पहले जड़ जमीन का सुधार हो जाएगा?
चैतन्य का।
पहले तो जो प्रतिनिधित्व करने वाली चैतन्य आत्मा है उसका सुधार हो।